अध्याय एक, भारतीय इतिहास के साधन। पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी बद्धमूल धारणाओं के आधार पर भारतीय इतिहास को अध्ययन करते हुए अनेक भ्रामक मतों का प्रतिपादन किया है। इन भ्रामक मतों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है उनका यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का पूर्णतः अभाव था। यही कारण है कि उन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु वह कथन अतिरंजित एवं असंगत है। महाभारत, रामायण, पुराणों एवं बहुसंख्यक प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और राजमुद्राओं आदि में प्राप्त वंश वृक्षों तथा अनेक ऐतिहासिक घटनाओं लेखों में स्पष्टतया प्रकट होता है कि भारतीयों में अपने इतिहास के प्रति उदासीनता न थी। अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेख तो उनकी आत्मकथा ही हैं। गुप्त सम्राटों के अभिलेखों में तत्कालीन भारत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं अंकित हैं। सातवीं शताब्दी में परिभ्रमण करने वाले चीनी यात्री वेनसांग का कथन है कि भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में ऐसे राजकीय पदाधिकारी थे जो अच्छी बुरी समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण लिखते रहते थे। कल्लड़ का कथन है कि वही गुणवान कवि प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर एकमात्र सत्य निरूपण में ही अपनी भाषा का प्रयोग करता है। आधुनिक इतिहासकार के लिए भी उज्ज्वल निर्देश है। भारतीयों की इतिहास बुद्धि का इससे सबल प्रमाण और क्या हो सकता है। परंतु फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इतिहास के महत्व को समझते हुए और इतिहास बुद्धि रखते हुए भारतीयों ने किसी ऐसे इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की जो आधुनिक दृष्टिकोण से इतिहास ग्रंथ माना जा सके। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम, तत्कालीन भारतीय की इतिहास की परिभाषा आधुनिक परिभाषा से भिन्न थी। उदाहरणार्थ, कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को ही स्थान दिया है। ऐसी दशा में भारतीय इतिहासकार, उपदेशक, सुधारक, कल्पकार एवं व्यवस्थाकार इत्यादि भी थे। परिणामतः उसकी कृतियों में ऐतिहासिक वृत्तों के साथ साथ कल्पित और अतिरंजित उल्लेखों का भी समावेश होना स्वाभाविक था। द्वितीय, भारतीय दृष्टिकोण सदैव से धर्मपरायण और आध्यात्मिकता प्रधान रहा है। अतः आत्मकल्पनाओं और आत्म प्रशस्तियों की अपेक्षा अपने सत्कर्मों को ही आत्म परिचय समझते थे। यही कारण है कि प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक, साहित्यिक एवं कला विषयक पद्धतियां, व्यवस्थाएं एवं परंपराएं जीवित रहीं। परंतु उनके निर्माताओं के व्यक्तिगत इतिहास विस्मृति के धूली पूंज में दब गए। अधिकांशतः प्राचीन भारत का इतिहास मौलिक तत्वों एवं सिद्धांतों का इतिहास है, भौतिक घटनाओं का नहीं। यदि पाश्चात्य विद्वान इन आधारभूत तथ्यों को समझने की चेष्टा करते तो कभी भी प्राचीन भारतीयों को इतिहास बुद्धि विहीन न कहते। डॉक्टर विक्टनीस का कहना है कि भारतीय पद्धति न कभी कभी इतिहास और पुराण तथा जन्मश्रुति में सुस्पष्ट विभेद स्थापित नहीं किया। अतः भारतवर्ष में इतिहास ग्रंथ रचना कभी भी महाकाव्य रचना की एक शाखा से अधिक न हो सकी। भारतीय विचारधारा का सम्यक बोध न होने के कारण यह उद्धरण भ्रामक हो सकता है। यही बात 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान अलबरूनी के निम्नलिखित कथन के लिए भी उपयुक्त है। हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर अधिक ध्यान नहीं देते। घटनाओं के कालक्रमानुसार वर्णन में वे बड़ी असावधानी दिखाते हैं। जब उनसे सूचना देने के लिए आग्रह किया जाता है और वे किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं, तब प्रायः वे कहानियां सुनाने लगते हैं। भिन्न दृष्टिकोण से रचित होने के कारण अधिकांश भ्रामक ग्रंथ आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत यद्यपि इतिहास ग्रंथ नहीं है, तथापि उनमें बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री अंतरित है। भारत के विशाल वांग्मय में चतुर्दिक जो करखरे पड़े हैं, उनके संग्रह, परिशोधन और संगठन से भारतीय इतिहास कलेवर के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिली है। भारतवर्ष के इतिहास निर्माण के लिए उपलब्ध समस्त साधनों को हम चार कोटियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला धर्मग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक एवं समसामायिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों के विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी। पहला धर्मग्रंथ। भारतवर्ष प्रारंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ की समस्त व्यवस्थाएं सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि धर्म को ही केंद्र बिंदु मानकर आगे बढ़ी थी। भारतीय जीवन के समस्त मूल्यों का निर्धारण धर्म के आधार पर ही हुआ था। धर्म की विशद एवं व्यापक परिभाषा के अंतर्गत धर्म और जीवन अन्योन्याश्रित बन गए थे। उनके बीच के विभेद रेखा तिरोहित हो गई थी। भारतीय के लिए धर्म जीवन का आदर्श बन गया था और जीवन धर्म का व्यवहार। धर्म के सर्वव्यापी महत्व के कारण यह नितांत स्वाभाविक था कि भारतवर्ष में बहुसंख्यक धार्मिक ग्रंथों की रचना होती। धर्म की व्यापक व्याख्या के अनुकूल इन धार्मिक ग्रंथों ने न केवल धर्म वरन जीवन के समस्त विषयों पर न्यूनाधिक मात्रा में विचार किया है। यही कारण है कि ये धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के धार्मिक साहित्य की एक अन्य विशेषता भी है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों ने अपने अपने ग्रंथों का पृथक एवं स्वतंत्र रूप में निर्माण किया था, अतः उनके धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों में बहुधा आधारभूत मतभेद है। परंतु जहाँ तक उनके धर्म ग्रंथों में उपलब्ध सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक झांकी का संबंध है, वह प्रायः एक सी है। यदि कहीं अंतर है भी तो एकमात्र दृष्टिकोण का। उदाहरणार्थ भारतीय वर्ण व्यवस्था को लीजिए। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में समान रूप से चतुर्वर्णों एवं अनेकानेक जातियों, उपजातियों के उल्लेख मिलते हैं। सभी में समान रूपा वस्तु स्थिति का चित्रण है। अंतर एकमात्र यही है कि जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ वर्ण व्यवस्था को आवश्यक समझकर उसे अक्षय रखने के लिए प्रयत्नशील है, वहाँ बौद्ध और जैन ग्रंथ उसे ग्रहित एवं हानिकर समझकर नष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसी अवस्था में इन धर्म ग्रंथों का साक्षेप महत्व है। किसी एक धर्म ग्रंथ में उल्लिखित वस्तु अप्रामाणिक हो सकती है, परंतु जब उसकी पुष्टि अन्य स्वतंत्र धर्म ग्रंथों से होती है तो वह प्रामाणिक समझी जाती है। धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ प्रमुख हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का वर्णन हम पहले करेंगे। पहला, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ वेद। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में सर्वप्रथम स्थान वेदों का है। विश्व के प्राचीन इतिहास में उनका विशेष महत्व है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वस्तुतः आर्य ऋषियों का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में संरक्षित है। उनका समस्त परिवर्तित ज्ञान इन्हीं वेदों पर आधारित है। ज्ञान किसी एक जाति, काल अथवा देश से संबंध नहीं रखता। इसी से वेद सार्वभौम, अनंत, अपरिशेष, शाश्वत और दैवी कहे गए हैं। ये वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद। चतुर्वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऋग का अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं अर्थात ऋग का बहुवचन में बद्ध हो ऋग्वेद कहलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में प्रवेश करने के पूर्व ही आर्य ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना कर चुके थे। भारतवर्ष में आने पर भी यह रचना जारी रही। स्नेह ऋचाओं की संख्या बढ़ती गई, परंतु अभी तक वे अस्त व्यस्त रूप में ही थी। उनका संगठन हुआ था। भारतवर्ष में अनादियों के संपर्क में आने से संपूर्ण परिस्थिति बदल गई। अनादियों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं आर्यों से भिन्न थीं। अतः आर्यों को भय हुआ कि कहीं अनार्य संपर्क उनके धर्म और उनके संस्कृति को विकृत रूप ना कर दे। इसी से उन्होंने अब अपनी समस्त ऋचाओं को संग्रहित करके सुरक्षित कर दिया। इसी से ऋग्वेद ऋग्वेद संहिता के नाम से भी प्रख्यात है। संहिता का अर्थ होता है संग्रह अथवा संकलन। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इनमें कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त की कतिपय विशेषता होती है। पहला, उसमें उस ऋषि का नाम अथवा गोत्र होता है जिसने उसकी रचना की थी। दूसरा, उसमें उस देवता का नाम होता है जिसकी उसमें स्तुति की गई है। तीसरा, छंद 21 माने गए हैं। अमुक सूक्त का जो छंद होता है वह भी उसमें लिखा रहता है। चौथा, जिस विशेष कार्य के लिए सूक्त का प्रयोग किया जाता है उसे विनियोग कहते हैं। अतः प्रत्येक सूत्र में विनियोग भी रहता है। ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट भी जुड़े हुए मिलते हैं। इन परिशिष्टों को खिल कहते हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंत में एक परिशिष्ट मिलता है, इसे बालखिल सूक्त कहते हैं। सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। अतः सामवेद ऐसा वेद है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति करते हुए गाए जाते थे। इस प्रकार यह वेद गान प्रधान है। उसमें कुल 75 मंत्र मौलिक हैं। से सभी मंत्र ऋग्वेद के हैं, परंतु स्वर भेद के कारण ये ऋग्वेद के मंत्रों से भिन्न हो गए हैं। सामवेद को गाने की यह विशेष विधि थी। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता थी। प्राचीन भारत में जो विशेषज्ञ सामवेद गाते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। इस वेद में अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का प्रतिपादन किया गया है, इसी से यह यजुर्वेद कहलाया। इसे अधर्वी वेद भी कहते हैं। अधर्वी भी यज्ञ का पर्यायवाची है। यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभक्त है: कटिक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैतरी और वाजस्नेयी। प्रथम 4 शाखाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत परिगणित होती हैं। 5वीं शाखा वाजस्नेयी को शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों से यज्ञ करते हुए देवताओं का आवाहन करने वाले व्यक्ति को होता कहते थे। इस प्रकार यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। अथर्ववेद। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसी से इसे अथर्ववेद कहते हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। इसका वर्ण विषय भी विविध है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रु दमन, रोग निवारण, जंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि अनेक विषय अंतर्निहित हैं। विषय विवेचन से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि अथर्ववेद में आर्य और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। कदाचित अथर्ववेद की अंतिम रूप में रचना तक आर्यों और अनार्यों का पारस्परिक संघर्ष समाप्त हो चुका था और दोनों एक दूसरे में हिल मिल रहे थे। विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान में अनार्यों के अनेकानेक निम्न सिद्धांतों की चिट्ठा प्रदान करके आर्य जीवन में प्रतिष्ठित किया, परंतु उसने स्वयं आर्य जीवन की उदात्तता, उच्चता, विशुद्धता पर भारी आघात पहुँचाया। आर्यों ने अनार्यों को अपने भीतर आत्मसात तो कर लिया, परंतु ऐसा करने में उन्हें भारी सांस्कृतिक क्षति उठानी पड़ी। ब्राह्मण, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही वैसे समाज में यज्ञों एवं कर्म कांडों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ये यज्ञ और कर्म कांड अत्यंत जटिल हो गए। उनके विधान तथा उनकी विक्रियाओं को समझाने के लिए एक नए साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ जो ब्रह्म साहित्य के नाम से प्रख्यात है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। ये वेदों पर ही आधारित है। वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हुए ही ये अपने यज्ञों को प्रतिपादित करते हैं। अधिकांशता ब्राह्मण गद्य में लिखे मिलते हैं, परंतु कहीं कहीं पद्य भी मिलता है। याज्ञिक विधियों की पृथक पृथक व्याख्या करने के कारण ब्राह्मण अनेक हैं। इस प्रकार प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं। यहाँ उदाहरण दे देना आवश्यक है। पहला, ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। दूसरा, यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण, इसे वाजस्नेयी ब्राह्मण भी कहते हैं। तीसरा, सामवेद का पंचविषम ब्राह्मण, इसे ताणेय ब्राह्मण भी कहते हैं। चौथा, अथर्ववेद का गौपत ब्राह्मण। आरण्यक, ब्राह्मणों के पश्चात आरण्यों का स्थान आता है। अरण्य अर्थात वन से बना है, अर्थात आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो वन में पढ़े जा सके। निश्चित है आरण्यकों ने कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार आरण्यकों में उस ज्ञान मार्गी विचारधारा का बीजारोपण होता है जिसका विकास हम उपनिषदों में देखते हैं। इस दृष्टि से भी आरण्य ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच में आते हैं। इस प्रकार इस समय 7 आरण्यक उपलब्ध हैं: ऐतरेय, शांखायन, तैतरी, मैत्रायणी, माध्यंदिन, वेदारण्यक, तलवकार आरण्यक। उपनिषद, उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। इनसे कुछ विद्वानों ने यह आशय निकाला कि जिस रहस्य विद्या की ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहते थे। अन्य विद्वानों का मत है कि उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो मनुष्य को ब्रह्म के समीप बैठा देती है अथवा उसे आत्मज्ञान करा देती है। जो भी हो, इसमें संदेह नहीं है कि उपनिषदों में विशुद्ध ज्ञान की सर्वज्ञ जिज्ञासा है। ये यांत्रिक यज्ञों के स्थान पर ज्ञान यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, समाज के नानत्व के ऊपर एकत्व का आरोप करते हैं और बहुदेववाद के स्थान पर परब्रह्म की प्रतिष्ठा करते हैं। ब्रह्म विषय होने के कारण ही उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण ये वेदांग भी कहे जाते हैं। भारतवासियों के आदितम चिंतनशील कृति होते हुए भी हम उपनिषदों में काफी विचार प्रवणता पाते हैं, यद्यपि उनमें अनेक स्थलों पर परस्पर विरोधी और अवैज्ञानिक कथन भी मिलते हैं, तथापि उनकी सूक्ष्मता, तर्कशीलता और उदात्त प्रयोजनशीलता प्रशंसनीय है। परिवर्ती हिंदू धर्म की प्रत्येक विचार प्रणाली किसी न किसी रूप में अपने को उपनिषदों से ही उद्भूत बताती है। प्रमुख उपनिषदों में ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, तैतरी, श्वेतास्वतर, छांदोग्य, वेदारण्यक, कौशितकी, ये 12 उपनिषद उल्लेखनीय है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि ये उपनिषद न एक व्यक्ति की और न एक काल की रचनाएं हैं। इनके विकास में दीर्घ काल तक ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के मनीषी व्यक्तियों ने बौद्धिक योग दिया है। इनके विकास में गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदुषी नारियों का भी योग कुछ कम नहीं रहा है। वेदांग, इसके पश्चात वेदांग आते हैं। ये 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सब वेदों के अंग समझे जाते थे। इनसे वेदों को समझना सरल हो गया था। शिक्षा, वैदिक स्तरों का विशुद्ध रूप में उच्चारण करने के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ था। कालांतर में प्रत्येक वेद की पृथक पृथक शिक्षा हो गई। कल्प, कल्प का अर्थ है विधि नियम। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्रों के तीन भाग हैं। पहला, जो सूत्र यज्ञ संबंधी विधि नियमों को बताते हैं वे श्रौत सूत्र कहलाते हैं। यज्ञों में बहुधा वेदियों और मंडप बनाए जाते थे। इन्हें बनाने के लिए नाप जोक की आवश्यकता पड़ती थी। इस कार्य के लिए भी अनेक विधि नियम बनाए गए जो सुलब सूत्र में अंतर्गत रखे गए हैं। सुलब का अर्थ नापना होता है। ये सुलब सूत्र श्रौत सूत्र के ही भाग है। इनमें हम सर्वप्रथम रेखागणित के बीज देखते हैं। दूसरा, जो सूत्र मनुष्य के समस्त लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन करते हैं वे गृह सूत्र कहलाते हैं। और तीसरा, जो सूत्र मनुष्य के विभिन्न धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करते हैं वे धर्म सूत्र कहलाते हैं। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि गृह सूत्र और धर्म सूत्रों के अनेकानेक विषय समान है। वैयाकरण, इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों और संधियों आदि के नियम बनाए गए। इनसे भाषा का रूप सुस्थिर ही गया। इस समय पाणिनी का सर्वविदित व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी मिलता है, परंतु स्वयं पाणिनी ने ही अपने ग्रंथ में व्याकरण के 10 पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि पाणिनी के पूर्व भी कुछ व्याकरण ग्रंथ थे। पाणिनी के अष्टाध्यायी में 18 अध्याय हैं। इन सब अध्यायों में समस्त सूत्रों की संख्या 3,863 है। कालांतर में यह अनुभव हुआ है कि पाणिनी के सूत्रों में ही कहीं कहीं पर कुछ कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए कात्यायन ने वार्तिक बनाए। कालांतर में पतंजलि ने पाणिनी के सूत्रों और कात्यायन के वार्तिकों को समझाते हुए अपना व्याख्या ग्रंथ लिखा जो महाभाष्य के नाम से प्रख्यात है। इस प्रकार संस्कृत की व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनी, कात्यायन और पतंजलि का प्रमुख स्थान है। निरुक्त, जो शास्त्र यह बताता है कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ होता है उसे निरुक्त शास्त्र कहते हैं। याश्क ने निरुक्त की रचना की थी। इसमें वैदिक शब्दों की निरुक्ति बताई गई है। याश्क ने अपने निरुक्त में 12 पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया है। इससे विदित होता है कि याश्क के पूर्व भी निरुक्त लिखे गए होंगे, परंतु अभाग्य से वे विलुप्त हो गए हैं। याश्क के निरुक्त में 12 अध्याय हैं। यदि उनमें 2 परिशिष्ट भी गिन लिए जाएं, तो कुल अध्यायों की संख्या 14 हो जाएगी। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि वैदिक काल में भी कोई छंद शास्त्र रहा होगा, परंतु आज वह प्राप्य नहीं है। आज तो आचार्य पिंगल द्वारा रचित प्राचीन छंद शास्त्र ही प्राप्त होता है। ज्योतिष, इस शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में लगत मुनि का नाम प्रमुख है। इनके अतिरिक्त नारद संहिता ज्योतिष के 18 आचार्यों का उल्लेख करती है। इनके नाम हैं ब्रह्मा, सूर्य, वशिष्ठ, अत्रि, मनु, सोम, लोमस, मरिचि, अंगिरा, व्यास, नारद, शौनक, भृगु, च्यवन, गर्ग, कश्यप और पराशर। कालांतर में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, मुजाल और भास्कराचार्य ने ज्योतिष शास्त्र की विशेष उन्नति की। स्मृतियाँ, सूत्र साहित्य के पश्चात भारतवर्ष में स्मृति शास्त्र का उदय हुआ। सूत्रों की भांति स्मृतियां भी मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विशेष कार्यकलापों के विषय में अगणित विधि निषेधों का प्रतिपादन करती हैं। प्रारंभिक स्मृतियों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। महाकाव्य, भारतवर्ष के 2 प्राचीन महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। इन पर आगे विचार किया जाएगा। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, अतः पुराण साहित्य के अंतर्गत वह समस्त प्राचीन साहित्य आ जाता है जिसमें प्राचीन भारत के धर्म, इतिहास, आख्यायन, विज्ञान आदि का वर्णन हो। हमारे पुराणों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। वस्तुतः कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण और इतिवृत्त दोनों को रखा है। पुराण 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदी पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। साधारणतया पुराणों का विषय सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित है। दूसरा, बौद्ध धर्म ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य की भांति बौद्ध साहित्य भी इतिहास निर्माण में कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत प्रमुखतया त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक में संग्रहित हैं। वेलर महोदय के मतानुसार पिटक का अर्थ टोकरी है। उनका कथन है कि प्राचीन भारत में हस्तलिपियां टोकरियों में संरक्षित की जाती थी। रिज डेवी डच महोदय भी पिटक का अर्थ टोकरी ही ग्रहण करते हैं, जो कालांतर में परंपरा अथवा संप्रदाय के रूप में ग्रहित होने लगा। बात यह थी कि उत्खनन के समय श्रमजीवी एक पंक्ति में खड़े हो जाते थे। उत्खनन में निकली हुई मिट्टी टोकरी में भरकर प्रथम श्रमजीवी को दे दी जाती थी और वह उसे द्वितीय श्रमजीवी को दे देता था। इसी प्रकार टोकरी कम से आगे वाले श्रमजीवी के हाथों में गुजरती हुई अंत में यथेष्ट स्थान पर पहुंच जाती थी। धार्मिक परंपरा भी टोकरी की भांति ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती रहती है। इसी से यह पिटक के रूप में समझी जाने लगी। जो भी हो, बौद्धों का मत है कि उनके पिटकों का संकलन और संगठन विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ था। प्रायः समस्त बौद्ध ग्रंथ इस बात पर एकमत हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। चुल्लवग इस संगीति के अधिवेशन की आवश्यकता बताते हुए उल्लेख करता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के अवसर पर जब समस्त भिक्षु शोक मग्न थे, उस समय सुभद्र नामक एक भिक्षु ने यह कहकर तथागत की मृत्यु पर संतोष प्रकट किया कि अब हम सब महात्मा बुद्ध द्वारा निर्मित एक प्रतिपादित अनेकानेक दुस्साह विधि निषेधों से मुक्त हो गए। अब हम सब स्वेच्छानुसार आचरण कर सकेंगे। इस भिक्षु के इस प्रकार के उत्तर द्वायित्वहीन कथन से संघ भेद की शंका उत्पन्न कर दी थी। इस भय निवारण का एकमात्र उपाय यही था कि महात्मा बुद्ध के समस्त उपदेशों को संग्रहित कर धम्म और विनय को निश्चित रूप दे दिया जाए, जिससे कोई भी भिक्षु धर्म के नाम पर अधर्म का प्रतिपादन न कर सके। बस इसी ध्येय से महाकश्यप ने राजगृह में 500 भिक्षुओं की एक संगीति आयोजित की थी। ओल्डेनबर्ग महोदय इस संगीति के ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते। इस अविश्वास के पक्ष में उनका प्रमुख तर्क यह है कि यद्यपि चुल्लवर्ग और महापरिनिब्बान सुत दोनों में ही सुभद्र की धृष्ट घोषणा का उल्लेख है, कि तथापि प्रथम बौद्ध संगीति के अधिवेशन के विषय में महापरिनिब्बान सुत नितान मौन है। अतः निश्चित है कि वह प्रथम संगीति के अधिवेशन से अवगत न था और चुल्लवर्ग में उल्लिखित इस संगीति का वर्णन अंतर की कपोल कल्पना है। फ्रैंक ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया, परंतु यह मत ग्राह्य प्रतीत नहीं होता। जैकोबी ने इस विद्वान के मत का खंडन किया है। वे प्रथम संगीति की ऐतिहासिकता पर विश्वास करते हैं। उनका कथन है कि महापरिनिब्बान सुत्त का प्रमुख ध्येय बौद्ध संगीति का वर्णन करना न था, अतः अप्रासंगिकता दोष से बचने के लिए ही यह सुत्त इस संगीति के अधिवेशन के विषय में मौन है। पुनः इस संगीति के विषय में महापरिनिब्बान सुत्त का मौन आकस्मिक भी हो सकता है। उदाहरणार्थ तिब्बती दुल्व पे सुभद्र की धृष्टता का उल्लेख है। इसका निष्कर्ष यह नहीं हो सकता है कि तिब्बती दुल्व को भी प्रथम संगीति का ज्ञान न था। दूसरे अतिरिक्त मूल सर्वास्तित्ववादियों के विनय संयुक्त वस्तु में महापरिनिब्बान के साथ साथ इस संगति का वर्णन भी प्राप्त होता है। इससे ओल्डेनबर्ग और फ्रैंक के तर्क का मूलाधार ही नष्ट हो जाता है। जब समस्त बौद्ध संप्रदायों की अनुश्रुतियां इस संगीति के अधिवेशन के पक्ष में हैं, तो हमें इसकी ऐतिहासिकता को अस्वीकार करने का कोई सबल कारण नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, यह बहुत संभव है कि वर्तमान रूप में प्राप्त धम्म और विनय की विशालकाय नियमावली का पाठ उस संगीति में न हुआ हो, उसके स्थान पर उनके आधारभूत सिद्धांतों का ही निर्धारण हुआ हो। त्रिपिटकों का विकास उन्हीं आधारभूत विद्वानों के सिद्धांतों के चतुर्विक कालांतर में हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का अधिवेशन हुआ। इस संगीति के अधिवेशन के कारण बौद्ध भिक्षुओं का सैद्धांतिक मतभेद बताया जाता है। वैशाली के भिक्षु 10 सिद्धांतों में विश्वास करते थे, परंतु जश नामक भिक्षु ने उन्हें धर्म विरुद्ध घोषित किया। दीर्घकालीन पारस्परिक वाद विवाद के पश्चात दोनों पक्षों के मतभेद पर निर्णय देने के हेतु ही इस संगीति का आयोजन हुआ था। यद्यपि प्रत्येक बौद्ध ग्रंथ में उपयुक्त सिद्धांतों की संख्या 10 दी गई है, तथापि उनके नाम और अर्थ भिन्न भिन्न मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध अनुश्रुति में एकमात्र सिद्धांतों की संख्या ही सुरक्षित रही, परंतु वास्तव में वे सिद्धांत क्या थे, उनका धर्म क्या था, यह ब्यौरा वैशाली संगीति के कुछ समय पश्चात विस्मृत हो गया। अतः उनकी संख्या के आधार पर भिन्न भिन्न बौद्ध संप्रदायों के भिन्न भिन्न प्रकार से 10 सिद्धांतों की कल्पना कर ली। चुल्लवग में द्वितीय बौद्ध संगीति में भाग लेने वाले अरहतों की संख्या 8 बताई जाती है, परंतु कालांतर में यह संख्या बढ़ते बढ़ते 700 हो गई। इन अरहतों के नाम स्थान और काल में भी बड़ी विषमता है। यही नहीं, दीपवंश का तो कथन है कि वैशाली की संगीति में पराजित होने के पश्चात यश के पक्षपातियों ने एक पृथक महासंगीति की, जिसमें 10,000 भिक्षुओं ने भाग लिया और अपने नवीन धम और विनय की स्थापना की। परंतु ये समस्त कथन पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं है। चुल्लवग का वर्णन सबसे अधिक प्राचीन एवं ऐतिहासिक है। इसके पश्चात, जैसा कि प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के साथ होता है, इस वर्णन में समय समय पर अनेक आश्चर्यजनक बातें जुड़ती हैं। परिणामतः अनेक बौद्ध ग्रंथों में इस संगीति की रूपरेखा अविश्वसनीय हो गई है, परंतु एकमात्र प्रक्षिप्त एवं अतिरंजित अंशों के आधार पर हम संगीति की ऐतिहासिकता को अस्वीकृत नहीं कर सकते। इस संबंध में एक और बात अति महत्वपूर्ण है। विनय का जो आधुनिक रूप है, उससे विवादग्रस्त दशों सिद्धांतों के उत्तर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु द्वितीय बौद्ध संगीति को इनके उत्तरों का निर्णय करने के हेतु अत्यधिक आयास और विवाद करना पड़ा था। इससे कतिपय विद्वानों का निष्कर्ष है कि कदाचित द्वितीय बौद्ध संगीति तक विनय का पूर्ण विकास न हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का वर्णन एकमात्र दीपवंश, महावंश, समंत पाशादिका में ही उपलब्ध होता है। उत्तरी भारत, चीन और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथ एवं अनुश्रुतियां इस संगीति से अपरिचित हैं। वेन सॉन्ग ने अपने लेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अशोक के, जिसके शासनकाल में इसका अधिवेशन बताया जाता है, अभिलेखों में भी इसका कोई वर्णन नहीं है। अतः अनेक विद्वान इसकी ऐतिहासिकता में अविश्वास करते हैं। यह अविश्वास दीपवंश और महावंश के संगीति संबंधी वर्णन से और भी बढ़ जाता है। इस वर्णन के अनुसार अशोक के शासनकाल में प्रायः प्रत्येक संघ में बौद्धों के रूप में बौद्धतर भिक्षु प्रविष्ट हो गए थे। इनके प्रवेश से संघ की धार्मिक व्यवस्था शिथिल हो गई और वास्तविक बौद्ध भिक्षुओं ने उपोषत और प्रमाणा करना भी स्थगित कर दिया। अशोक ने जब यह समाचार सुना तो उसे बड़ा खेद हुआ। उसने वास्तविक और कृत्रिम बौद्ध भिक्षुओं के अभिज्ञान के निमित्त पाटलिपुत्र में तिष्य मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में भारतवर्ष के समस्त भिक्षुओं की एक संगीति की। इसमें तिष्य ने समस्त बौद्धेतर भिक्षुओं के सिद्धांतों की निस्सारता प्रदर्शित की। एकमात्र विभज्यवादी ही ऐसे थे जिनके सिद्धांत सत्य प्रमाणित हुए। इसके पश्चात तिष्य ने कथावत्थु की रचना की। इस प्रकार के वर्णन में जो विस्तृत ब्योरा है, वह बड़ा ही संदिग्ध प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, संघ में सहस्त्रों बौद्धेतर भिक्षुओं का प्रवेश, स्वयं अशोक की राजधानी के आराम में 7 वर्ष तक उपोषत का बंद रहना और फिर अशोक को उसका पता न चलना, तिस मोगलीपुत्र में दैवी शक्तियों का होना और भी राज्य के ऐसे असाधारण मनुष्य से अशोक का 18 वर्ष तक अपरिचित रहना आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो अविश्वसनीय को भावना उत्पन्न करते हैं इसी से डॉक्टर RC मजूमदार इस संगीति ऐतिहासिकता में शंका करते हैं। उनका मत यह है कि यदि अशोक के काल में बौद्ध संगीति हुई भी तो वह समस्त बौद्ध भिक्षुओं की ही नहीं वरन विभज्यवादी बौद्ध भिक्षुओं की सांप्रदायिक संगीति ही रही होगी। अतः इससे समस्त देश के बौद्धों के हेतु धर्म की व्यवस्था की आशा करना असंगत प्रतीत होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अधिवेशन कनिष्क के काल में बताया जाता है। यद्यपि अधिकांश बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है, तथापि दीपवंश और महावंश इसके विषय में मौन है। समस्त साक्ष्यों के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि संगीति धार्मिक मतभेदों निराकरण करने के हेतु हुई थी, परंतु फिर भी इसके विषय में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न उल्लेख मिलते हैं। वेन सॉन्ग के कथनानुसार यह संगीति कश्मीर में हुई थी। इसके विरुद्ध तारानाथ का कथन है कि यह जालंधर में हुई थी। वेन सॉन्ग के वर्णानुसार इस संगीति ने सूत्र विनय और अभिथम्ब के ऊपर टीकाएं लिखी थी। तारानाथ का कथन है कि इस समय देश में बौद्धों के 18 संप्रदाय थे। संगीति ने सबके सिद्धांतों की मान्यता स्वीकार कर ली और सूत्र विनय तथा धम्म के जो भाग अभी तक अलिखित थे उन्हें लेखबद्ध कर दिया। इसके विरुद्ध तिब्बती बुद्ध चरित का उल्लेख है कि संगीति ने समस्त बौद्ध ग्रंथों के संग्रह करने का कार्य किया था। इन मतों में से तारानाथ का मत ग्रहण करना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि उसका अर्थ तो यह होगा कि ईसा की प्रथम शताब्दी तक सूत्र विनय और अभिधम्म का पूर्ण लिखित रूप न हुआ था। जहाँ तक दो अन्य मतों का संबंध है, उनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि संभव है कि संगीति ने बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया हो और उस पर टीकाएं लिखी हो। इस प्रकार विभिन्न संगीतियों ने त्रिपिटकों का विकास करने में महत्वपूर्ण योग दिया। विनय पिटक, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध और यम नियम इत्यादि संग्रहित हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि त्रिपिटकों में अभिथम पिटक सब बात का है, परंतु यह कहना कठिन है कि शेष दो पिटकों में अधिक प्राचीन कौन है। विनय पिटक और सूत्र पिटक के अनेक अंश उभयनिष्ठ हैं। इनसे अनुमान किया जा सकता है कि दोनों का अंतिम संगठन प्रायः एक ही समय हुआ होगा। कर्ण महोदय का मत है कि विनय पिटक सूत्र पिटक के अधिक प्राचीन है, परंतु यह मत सर्वमान्य नहीं है। बहुत संभव है कि विनय पिटक के कुछ अंश सूत्र पिटक के कुछ अंशों के बाद के हों। उदाहरणार्थ विनय पिटक के महावग और चुल्लवग सूत्र पिटक के दीर्घ निकाय के बाद के प्रतीत होते हैं। जो भी हो, बौद्ध परंपरा के अनुसार विनय पिटक त्रिपिटकों में अग्रणी माना जाता है। यह पिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, सुत विभंग। इसके दो उपभाग हैं, महाविभंग और भिक्षुड़ी विभंग। दूसरा, खंडका। इसके दो उपभाग हैं, महावक और चुल्लवक। तीसरा, परिवार अथवा परिवार पाठ। पहला, सूत विभंग का अर्थ है सूत्रों पर टीका। वास्तव में यह पाटीमुख के 227 नियमों पर टीका है। पाटीमुख कदाचित प्रतिभोज्य का रूपांतर है जो बंधन के अर्थ में व्यवहृत होता है। इसमें बौद्धों के हेतु पाप कर्मों एवं उनके प्रायश्चितों का संगठन है। इस प्रकार अनुशासन संबंधी विधि निषेधों और दंड विधान ने बौद्ध संप्रदाय को एक संगठन के सूत्र में बांध दिया। यही कारण है कि पाटीमुख का बौद्ध समाज में विशेष महत्व रहा और मास के दो बार उसके नियमित पाठ की व्यवस्था की गई थी। सूत्र विभंग में इसी पाटीमोक्ष के सरल सूत्रों की व्याख्या करके उसका विस्तार कर दिया गया था। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के लिए पाटीमोक्ष है। इसमें 8 पापों पर क्रमशः एक एक अध्याय है। कालांतर में बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी पाटीमोक्ष की आवश्यकता समझी गयी। भिक्खुनी विभंग, इसी भिक्खुनी पाटीमोक्ष पर टीका है। दूसरा, खंडकायों में संघी जीवन के संबंध में सविस्तार विधि निषेध है। सूत्र विभंग की अपेक्षा खंडकायों में चित्रित बौद्ध समुदाय का संगठन और जीवन यापन अधिक विकसित और नियमबद्ध प्रतीत होता है। इनमें विधि निषेधों का प्रतिपादन स्वयं महात्मा बुद्ध के मुख से कहानियों के रूप में कराया गया है। इन विधि निषेधों का विकास एक समय में न होकर स्नेह भिन्न भिन्न समय में हुआ होगा। इनमें से कुछ महात्मा बुद्ध के पूर्व के परिवारजक समुदाय के होंगे, कुछ स्वयं उनके समय के, और अधिकांश का विकास उनकी मृत्यु के पश्चात हुआ होगा। महावग और चुल्लवग दोनों में ही भिक्षुओं के संघी एवं दैनिक जीवन के संबंध में नाना प्रकार के विधि निषेध एवं यम नियम हैं। अंतर एकमात्र इतना ही है कि महावग में प्रमुख एवं अधिक महत्वपूर्ण विषयों का समावेश है, जबकि चुल्लवग में गौण और अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषयों का। महावग में 8 अध्याय हैं और चुल्लवग में 12। इन 12 अध्यायों में 10वां अध्याय भिक्षुणियों के आचार के संबंध में है। 11वें और 12वें अध्याय में प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगीतियों का वर्णन है, परंतु निश्चित रूप से ये कालांतर के पक्षिप्रतांश हैं। तीसरा परिवार अथवा परिवार पाठ, यह प्रश्नोत्तरी के रूप में है। विनय पिटक के अन्य भागों की अपेक्षा यह भाग कालांतर की रचना है। इसके 19 उपभाग हैं। सुत पिटक, बौद्ध साहित्य में सुत का अर्थ धर्मोपदेश अथवा धर्माख्यान होता है। सुत पिटक इन्हीं धर्म उपदेशों का समुच्चय है। न्यूमन महोदय के मतानुसार सुत पिटक के आधार पर ही विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का विकास हुआ था, परंतु सुत पिटक विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के कतिपय अंशों की समता मात्र से ही हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। सुत पिटक से बौद्ध धर्म की रूपरेखा यथेष्ट स्पष्ट हो जाती है। इस पिटक में 5 निकाय हैं। निकाय अर्थात संग्रह। पहला दिघ निकाय, इसके सुत्त अन्य निकायों के सुत्तों की अपेक्षा अधिक बड़े हैं। इसमें कुछ गद्य में हैं और कुछ गद्य पद्य मिश्रित गाथा में। अधिकांश सुत्तों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं सदाचारिता का प्रतिपादन किया गया है और अन्य धर्म मत मतांतरों का खंडन। इस निकाय का सबसे अधिक प्रसिद्ध सुत्त है महापरिनिब्बान सुत्त। वास्तव में यह महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम चरण की कथा है। विषय, भाषा और शैली को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिग निकाय किसी एक लेखक अथवा एक काल की रचना नहीं। दूसरा मध्यम निकाय, इसके सुत न अधिक दीर्घ हैं और न अधिक लघु, वे मध्या आकार हैं। इसमें भी बौद्ध धर्म के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर व्याख्यान, वार्तालाप और कथानक हैं। कुछ स्थलों महात्मा बुद्ध को मानव रूप में चित्रित किया गया है, परंतु अन्य स्थलों पर वे अद्भुत शक्तियों से समन्वित दैवी रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि मध्यम निकाय के विभिन्न अंश भी भिन्न भिन्न लेखकों और कालों की रचना है। तीसरा संयुक्त निकाय, यह सुत्तों के संयुक्तों अर्थात वर्गों का समुच्चय है। एक एक विषय के ऊपर अनेक सुत्त हैं। इन्हीं समान विषयक सुत्तों का प्रत्येक संग्रह संयुक्त के नाम से प्रख्यात है। अतः संयुक्त निकाय को ऐसे ही अनेक संयुक्तों का संकलन समझना चाहिए। प्रत्येक संयुक्त में या तो एक ही विषय के सुत्त हैं या एक ही देवता अथवा एक ही चरित्र नायक के। इस निकाय में गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया गया है। इसका विषय भी विविध है। कहीं महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन है तो कहीं देवी देवताओं और अन्य लोगों का। कहीं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मंडन है तो कहीं विरोधी धर्मों के सिद्धांतों का खंडन। चौथा अंगुत्तर निकाय, इसके सुत 11 निपातों में संगठित है। यह संगठन संख्या के आधार पर किया गया है। 11 निपातों के क्रमशः 1 से लेकर 11 संख्या वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। उदाहरणार्थ तिथि निपात में सर्वत्र 3 संख्या वाली वस्तुओं के संबंध में प्रवचन है। एक स्थान पर महात्मा बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश देते हैं और 3 वस्तुएं गुप्त रूप से कार्य करती हैं, नारी, ब्राह्मणों के मंत्र और मिथ्या सिद्धांत। इसी प्रकार इस निपात में आगे कहा गया है कि 3 वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश करती हैं, चंद्रमा, सूर्य और बौद्ध धर्म। पांचवा खुद्दक निकाय, यह लघु ग्रंथों का संग्रह है। यह ग्रंथ स्वतः स्वतंत्र और पूर्ण है। यह विषय, भाषा और शैली में भी नितांत भिन्न है। इससे प्रतीत होता है कि खुद्दक निकाय अपने पूर्ण रूप में कालांतर की रचना है। इसके अंतर्गत निम्न ग्रंथ आते हैं। पहला खुद्दक पाठ, यह बौद्ध प्रार्थनाओं, मंत्रों, सूत्रों अथवा मंगल पाठ का एक लघु ग्रंथ है। कदाचित बौद्ध इसका पाठ अथवा पारायण करते थे। दूसरा धम्मपद, इसमें धर्मशील और सदाचार के ऊपर बहुसंख्यक सुंदर सिद्धांत वाक्य हैं। व्यवहारिक और सार्वभौम होने के कारण इनमें से अनेक सिद्धांत वाक्य अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी उपलब्ध होते हैं। पद्यबद्ध होने के कारण बौद्ध इन्हें बड़ी सुगमता से कंठस्थ कर लेते थे। तीसरा उदान, इसमें छोटे छोटे कथानक हैं। प्रत्येक कथानक का अंत किसी न किसी शिक्षाप्रद पद्यबद्ध कथन से होता है। चौथा इतिवृत्तक, इसमें बुद्ध वाक्यों का संग्रह है। इसमें लगभग 112 कथानक हैं, जो गद्य और पद दोनों से लिखित है। पांचवा सुत निपात, यह विविध धर्मोपदेशों और धर्माख्यायों का संग्रह है। इस ग्रंथ का महत्व इसी से प्रकट हो जाता है कि अशोक ने भाप्रु शिलालेख में जिन धर्म ग्रंथों का उल्लेख किया है उनमें कदाचित सुत निपात के कुछ अंश भी हैं। छठवा विमानवत्थु, इसमें विमानों, दिव्य प्रसादों की कथाएं हैं। प्रत्येक कथा में कोई न कोई दिव्य पुरुष यह बताता है कि उसने अमुक विमान से कैसे प्राप्त किया। सातवा प्रेतवत्थु, इसमें प्रेतों अथवा भूतों की कहानियां हैं। प्रत्येक में कोई न कोई प्रेत यह बताता है कि किन कुकर्मों के फलस्वरूप उसकी यह अथोगति हुई है। इन कहानियों का मुख्य ध्येय कर्मवाद का प्रतिपादन था। आठवा खेर गाथा, यह स्थविरों के गीतों का संग्रह है। इसमें 107 कविताएं हैं जो भिन्न भिन्न स्थविरों की रचनाएं हैं। नौवा थेरी गाथा, यह स्थविरों अर्थात भिक्षुणियों के गीतों का संग्रह है। जिसमें 73 कविताएं हैं। इन्हें भी भिन्न भिन्न भिक्षुणियों ने निर्मित किया था। दोनों गाथाओं में समान रूप से पौधों की निवृत्ति, संयम, शांति, निर्द्वंदता का विशुद्ध चित्रण है। दसवां जातक, ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। मौलिक जातक संग्रह तो विलुप्त हो गया है, परंतु जातकों का ज्ञान हमें उस ग्रंथ पर लिखित एक टीका जातक अठवर्णना में होती है। इसे किसी सिंहली भिक्षु ने लिखा था। जातकों में गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। बरहूत और सांची के स्तूपों पर अनेक जातक दृश्य अंकित हैं। बरहूत स्तूप पर कुछ जातकों के शीर्षक भी उल्लिखित है। इससे स्पष्ट है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक जातकों का निर्माण हो चुका था। यही नहीं, जातकों में उल्लिखित आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था से प्रकट होता है कि वो ईसा पूर्व सातवीं और छठी शताब्दियों तक की है। जो भी हो, इतना निश्चित है कि जातकों के पद्यांश गद्यांशों की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, क्योंकि गद्यांशों में जितनी सरलता पूर्वक परिवर्तन किए जा सकते हैं, उतनी सरलता पूर्वक पद्यांशों में नहीं। खुद्दक निकाय के अन्य ग्रंथों में निर्देश, पट्टी समिदामग, अपदान, बुद्धवंश और चरिया पिटक है। तीसरा, अभिधम पिटक। अभी का अर्थ होता है उच्चतर, अतः अभिधम पिटक का विषय धर्म तो है, परंतु उसका विवेचन उच्चतर व्याख्या और दर्शन के रूप में किया गया है। अभिधम पिटक में थम्भ संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुंगल, पंजति और कथावत्थु परिगणित होते हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कथावत्थु। बौद्ध परंपरा के अनुसार मुगली पुत्र तिस्त से तृतीय बौद्ध संगीति के अवसर पर इसका संकलन किया था, परंतु इस ग्रंथ के वर्तमान रूप को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि समय समय पर इसमें प्रतिपक्षिपतांशों का समावेश होता रहा। कथावत्थु में मत पुष्टि के निमित्त अनेक स्थानों पर विनय पिटिका और सुत पिटक के उद्धरण दिए हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कथावत्थु की रचना इन दोनों पिटकों के पश्चात ही हुई होगी। अन्य पाली बौद्ध ग्रंथ। उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ ऐसे पाली बौद्ध ग्रंथ भी हैं जो त्रिपिटक के अंतर्गत न होने पर भी भारतीय इतिहास निर्माण के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं। इनमें विशेष उल्लेखनीय है मिलिंद पन्हो, दीपवंश तथा महावंश। मिलिंद पन्हो में यूनानी नरेश मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। मिलिंद धार्मिक प्रवृत्ति का मनुष्य था। वह अपने संशयों एवं शंकाओं के निवारणार्थ किसी विद्वान से वाद विवाद करना चाहता था। अंत में वह स्थविर नागसेन के संपर्क में आया। मिलिंद पन्हो में दोनों के ऐतिहासिक मिलन और वार्ता का वर्णन है। मिलिंद पन्हो की रचना मिनेंडर के देहांत के अधिक काल पश्चात ही नहीं हो सकती। ये उसी समय हुई होगी जबकि मिनेंडर की स्मृति भारत में अक्षय होगी। मिनेंडर के पश्चात भारत में यूनानी साम्राज्य का विनाश हो गया और कुछ समय पश्चात भारतीय जनता यूनानी साम्राज्य एवं मिनेंडर के साम्राज्य को भी भूल गई होगी। इस प्रकार मिनेंडर की स्मृति भारतवर्ष में ईसा की पहली शताब्दी तक ही अवशिष्ट रही होगी और यही काल साधारणतया मिलिंद पन्हो का रचना काल हो सकता है। प्रसिद्ध पाली विद्वान रिज डेविड्स के मतानुसार मिलिंद पन्हो और कथावत्थु में पर्याप्त विषय साम्य है। इस आधार पर भी यह ग्रंथ बहुत बात का नहीं प्रतीत होता। वेबर महोदय का मत है कि मिलिंद पन्हो के वार्तालाप प्लेटो के वार्तालापों से मिलते जुलते हैं, अतः इस ग्रंथ का निर्माण यूनानी प्रभाव के अंतर्गत हुआ था। परंतु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रथम शताब्दी में वार्ता शैली भारतवर्ष के लिए कोई नवीन शैली न थी, वह उपनिषदों के समान प्राचीन थी। उपनिषदों के अतिरिक्त महाभारत और त्रिपिटक में इसके बहुसंख्यक उदाहरण भरे पड़े हैं। पुनः स्वयं मिलिंद पन्हो में भी यूनानी भाषा अथवा विचार पद्धति के परिचय एवं प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का कथन है कि मिलिंद पन्हो के लेखक ने किसी यूनानी मूल कृति के आधार पर अपनी रचना की थी। यह कथन भी नितांत काल्पनिक ही प्रतीत होता है। मिलिंद पन्हो से तो कोई भी ऐसा सबल प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सके कि उसके लेखक को यूनानी भाषा का ज्ञान था। मिलिंद पन्हो के वर्तमान रूप की भारतीय प्रतिलिपि में 7 सर्ग उपलब्ध होते हैं, परंतु 3 सर्ग के पश्चात ही मिलिंद के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। पुनः 4 सर्ग से भाषा और शैली में भी अंतर्दृष्टिगत होने लगता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अपने आदि रूप में इस ग्रंथ में केवल 3 सर्ग ही थे, अगले 4 सर्ग कालांतर के प्रक्षेप हैं। इस अनुमान की पुष्टि इस बात से ही होती है कि चीनी मिलिंद पन्हो में एकमात्र 3 सर्ग ही हैं। दीपवंश में सिंहलदीप के इतिहास का वर्णन है, इसकी रचना विलुप्त अट्ठकथाओं के आधार पर ही हुई थी। आधुनिक परिभाषा के अनुसार यह ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ साथ इसमें कपोल कल्पित एवं अतिरंजित उल्लेखों की भी भरमार है। शैली से प्रकट होता है कि सिंहली लेखक जो अज्ञात है, इतिहास लिखने के साथ साथ महाकाव्य लिखने का भी प्रयास कर रहा है। इसकी रचना लगभग चौथी अथवा पांचवी शताब्दी में हुई थी। सिंहल का द्वितीय ग्रंथ महावंश है। इसकी रचना कदाचित महानाम नामक कवि ने लगभग पांचवी शताब्दी में की थी। काव्य की दृष्टि से यह ग्रंथ दीपवंश की अपेक्षा कहीं अधिक उत्कृष्ट है। इसका वर्णित विषय भी दीपवंश की अपेक्षा अधिक विशद और विस्तृत है, परंतु कपोल कल्पित और अतिरंजित सामग्री दोनों ही ग्रंथों में समान रूप से पाई जाती है। परंतु इतना होते हुए भी दोनों ग्रंथ इतिहास निर्माण में पर्याप्त रूप से सहायक हुए हैं। उदाहरणार्थ चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष ज्ञान हमें सर्वप्रथम इन्हीं ग्रंथों से हुआ। इसके अतिरिक्त कतिपय टीकाओं, सुमंगल, विलासिनी, सम्मत, पाषदी का, महावंश टीका आदि ने भी भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। बौद्धों ने पाली के अतिरिक्त संस्कृत में भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इनमें कुछ हीनयान संप्रदाय के हैं और अधिकांश महायान के। सर्वप्रथम उल्लेखनीय है महावस्तु। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ हीनयान और महायान के बीच की संक्रांति काल में लिखा गया था। इसी से यद्यपि यह हीनयान संप्रदाय का है, तथापि इसमें महायान संप्रदाय की विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। उदाहरणार्थ इसमें महात्मा बुद्ध को अद्भुत शक्ति समन्वय स्वरूप में दिखाया गया है। अरहत पद के स्थान पर बोधिसत्व पद की प्रतिष्ठा की गई है और निर्वाण को न केवल भिक्षुओं के लिए वरन जन साधारण के लिए भी प्राप्य बताया गया है। महावस्तु विशेषतया महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है। इसमें अनेक जातक कथाएं हैं, तथागत अनेक के लोकोत्तर कर्म भी वर्णित हैं। यह ग्रंथ महायान ग्रंथों की भांति विशुद्ध संस्कृत में लिखित नहीं है। इसकी भाषा मिश्रित संस्कृत है। इससे प्रकट होता है कि इसका रचना काल काफी प्राचीन है। कदाचित इसका मूल रूप ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी का है। यद्यपि अन्य महायान सांप्रदायिक अंश ईसा की चौथी शताब्दी तक के हैं। विशुद्ध महायान संप्रदाय के ग्रंथों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है ललित विस्तार। इसका शाब्दिक अर्थ है महात्मा बुद्ध के ललित का सविस्तार वर्णन। इस प्रकार इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के ऐहिक जीवन को क्रीड़ा स्वरूप ग्रहण किया गया है। स्पष्ट है कि लेखक ने महात्मा बुद्ध को दैवी शक्ति के रूप में ग्रहण किया है और अद्भुत कर्मों से समन्वित उनके जीवन वृत्त को अंकित किया है। बहुत संभव है कि ललित विस्तार में जिस महायान परंपरा का विकास किया गया था उसने गांधार कला के कलाकारों को विषय दान किया हो। जावा के बोरोबदूर के मंदिर की अनेक स्थापत्य कृतियां ललित विस्तार में वर्णित स्वरूपों और घटनाओं के अनुरूप है। भाषा, विषय और शैली की भिन्नता को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ किसी एक लेखक अथवा एक काल की रचना नहीं है। उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त महाकवि अश्वघोष की कृतियों में भी कुछ कम इतिहास सामग्री नहीं है। अनुश्रुतियों के अनुसार अश्वघोष सम्राट कनिष्ठ का समकालीन बताया जाता है। इसके समस्त कृतियों में बुद्धचरित और सौंदरानंद काव्य सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। बुद्धचरित एक महाकाव्य है। साहित्य दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनके शिक्षाओं का समावेश है। सौंदरानंद में भी कवि ने महात्मा बुद्ध के जीवन तथा बौद्ध सिद्धांतों का चित्रण किया है। बौद्ध साहित्य में अवदान साहित्य का भी बहुत कम महत्व नहीं है। अवदान का अर्थ होता है सत्कर्म अथवा वीरोचित कर्म। इस कोटि की कृतियों में दिव्या वरदान उल्लेखनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके कथानक अनेक भिन्न भिन्न ग्रंथ से लिए गए हैं। भाषा, विषय और शैली को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि यह भी एक लेखक अथवा एक काल की रचना नहीं है। समय समय पर इसमें प्रक्षेपों का समावेश होता रहता है। अशोक के उत्तराधिकारियों का उल्लेख करते हुए यह पुष्पमित्र शुंग तक का वर्णन करता है। यही नहीं, यह दिनार मुद्रा तक से परिचित है। इन सब बातों से यह काफी बात की रचना प्रतीत होती है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि इसमें अनेक अंश ईसा के चौथे शताब्दी तक के हैं। उपयुक्त प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्धों के विभिन्न संप्रदायों ने स्वतंत्र रूप से अपने पृथक पृथक ग्रंथों का निर्माण किया। मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, लंका आदि विदेशों में भी अनेक पाली और संस्कृत में लिखित भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया। अनेक विदेशी बौद्ध यात्रियों ने अपनी भाषाओं में भी भारत संबंधी विवरण लिखे। इन सब में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री अंतर्निहित है। इसमें तुलनात्मक अध्ययन से नित्य नूतन महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट हो रहे हैं और अभी दीर्घकाल तक होते रहेंगे। जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध साहित्य के समान जैन साहित्य भी हमारे इतिहास निर्माण के लिए अति उपयोगी है। इसमें जैन आगम सर्वोपरि है। इसमें साधारणतया 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 सूत्र, नंदी सूत्र, अनियोग द्वार और मूल सूत्र परिगणित होते हैं। इनकी रचना अथवा संकलन किसी एक व्यक्ति अथवा एक काल का कार्य नहीं। वास्तव में इनकी रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से चलकर ईसा की 6वीं शताब्दी तक के दीर्घ काल में भिन्न भिन्न धार्मिक संगीतियों और व्यक्तियों के दीर्घ प्रयास से हुआ था। जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर स्वामी की आदि शिक्षाएं 14 पूर्वों में संकलित थीं, परंतु शीघ्र ही वे विस्तृत हो गयी। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 160 वर्ष पश्चात ईसा पूर्व 30 के लगभग अपनी वृक्ष श्रृंखल धर्म परंपराओं के संग्रहित और संगठित करने के हेतु जैन भिक्षुओं ने पाटलिपुत्र में अपनी प्रथम धर्म संगीति का अधिवेशन किया। पुनः महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात 827 और 840 वर्षों के बीच देश में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप या तो अनेकानेक विद्वान जैन भिक्षु काल कवलित हो गए या अध्ययनाभाव से उनके धर्म ग्रंथ आंशिक रूप से विलुप्त हो गए। अतः अपने धार्मिक ग्रंथों को पुनः संगठित करने के हेतु जैन भिक्षुओं ने एक दूसरी संगीति के अधिवेशन का आयोजन किया। संगीति एक ही समय दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई। आर स्कंदिल की अध्यक्षता में मथुरा में और नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में बल्लभी में। इनमें धर्म ग्रंथों का पुनः संगठन किया गया, परंतु पृथक पृथक दो स्थानों पर स्वतंत्र रूप से आयोजित होने के कारण इन संगीतों द्वारा संगठित धर्म ग्रंथों में विभेद होना स्वाभाविक था। यह विभेद बहुत दिनों तक चलता रहा। अंत में इनके निर्माणार्थ महावीर स्वामी की मृत्यु के 980 अथवा 993 वर्ष पश्चात 1513 ईस्वी अथवा 1526 ईस्वी देवर्धी के नेतृत्व में बल्लभी में एक अन्य संगीति का आयोजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप समस्त जैन धर्म ग्रंथों को लिखित रूप दिया गया। महत्व की बात है कि वादग्रस्त प्रश्नों पर एकमत के अभाव में संगठनकर्ताओं ने एक बार भिन्न भिन्न मतांतरों एवं पाठांतरों का भी उल्लेख कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म ग्रंथ का किसी एक काल की रचना नहीं है, उनका संगठन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। बहुत संभव है कि उनका आंशिक रूप महावीर स्वामी के शिष्यों ने ही संगठित किया हो। कालांतर में उनका संशोधन एवं प्रवर्धन भिन्न भिन्न संगीतियों में होता रहा। आज जैन आगम का जो आकार प्रकार है वह प्रारंभिक आकार प्रकार से बहुत कुछ भिन्न है। नंदी के अनुसार न्यायाधम्म कहाँ में 3.5 करोड़ पद होने चाहिए, परंतु आज उसमें पदों की संख्या इससे कहीं कम है। पुनः शिलांक, मल्लगिरी आदि टीकाकारों का स्पष्ट कथन है कि अमुक सूत्र गलित और दुर्लभ है। इसी प्रकार टीकाकार अभयदेव का कथन है कि अनेक स्थानों पर आगमों के पाठ अशुद्ध और दुर्बोध हैं। यही नहीं, आगम के अनेक प्राचीन भाग सदैव के लिए विलुप्त हो गए हैं। उदाहरणार्थ दिट्ठे के वाय का विलोप तो स्थूल भ्रत के समय से ही हो चुका था। इसी प्रकार आज पंचकप्य उपलब्ध नहीं है। आचारांग सूत्र के एक अंश महापरिण की भी यही दशा है। पुनः अनेकानेक स्थलों पर जैन ग्रंथों की सामग्री अनैतिहासिक है। उदाहरणार्थ क्षणिक, अजातशत्रु, उदयन और प्रदोध ऐसे कतिपय राजाओं को छोड़कर महावीर स्वामी के अधिकांश तथा कथित समकालीन नरेश काल्पनिक हैं। यही बात अनेक तिथियों के लिए सत्य है, परंतु इन त्रुटियों एवं अभावों के होते हुए भी जैन ग्रंथ पूर्ण रूपेण अप्रामाणिक एवं अनैतिहासिक नहीं है। अन्य धार्मिक ग्रंथों की भांति उनमें भी कल्पित अतरंजित एवं प्रक्षिप्त अंशों की धूमिल राशि के भीतर ऐतिहासिक कण दबे पड़े हैं। हमारे अतीत के इतिहास निर्माण में यह कण पुंज अति सहायक हुए हैं। जैन आगम में प्रमुख स्थान 12 अंगों का है। आचारंग सूत्र के दोनों स्कंधों में जैन भिक्षु के आचार नियमों का उल्लेख है। शिवगदंग सूत्र विरोधी मतों का खंडन तथा जैन भिक्षुओं की जीवन प्रणाली का मंडन है। थाणंग में बौद्ध अंगत्तर निकाय की भांति 1 से 10 की संख्याओं के आधार पर विविध प्रवचन है। सम्मोवायंग सूत्र में भी बहुसंख्यक संख्याओं के आधार पर अनेक प्रकार के उपदेश है। भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन एवं कार्यकला आपके ऊपर प्रचुर प्रकाश डालता है। नया धम्म कहा सुत में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं। वाशगदशाओ सुत में उपासक जीवन के विधि निषेधों एवं आचार विचारों का संग्रह है। अंतगढ़ राशि सुत और अड़ुत्तरो वयाइयदशायो सुत में प्रख्यात भिक्षुओं की निर्वाण प्राप्ति का वर्णन है। पन्हा वागरनाइम सूत्र में जैन यम नियमों का उल्लेख किया गया है। निवांग संयम सूत्र में कर्मफल का प्रदर्शन है। अंतिम सूत्र निठे ये वायु विलुप्त हो गया है। दूसरे ग्रंथों में यत तत्र इसके उद्धरण ही मिलते हैं। प्रत्येक अंग का एक उपांग है। इनके नाम है उपवायी राय शेड़े रैज जीवा जीवाभिगम पन्नवत्रा सुरपनति चंबदुद्दीय पन्नति चंद पन्नति निर्वायवली कपवडक्षियांगो पुफियांगो पुक्क चली आओ और बहिंद गाशाओ। जैसे कि पीछे कहा गया है इनके अतिरिक्त जैन धर्म ग्रंथों में 10 प्रकरण 6 छेद सूत्र 1 नंदी सूत्र 1 अनियोगदार और 4 मूल सूत्र भी परिगणित होते हैं। इन सब ग्रंथों में विविध विषयों का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। कालांतर में प्राचीन जैन धर्म ग्रंथों के ऊपर समय समय पर अनेक व्याख्या ग्रंथ लिखे गए। ये व्याख्या ग्रंथ 5 प्रकार के हैं। पहला निर्युक्ति आगम के विभिन्न विधि निषेधों को समझाने के लिए छोटी छोटी पद्ममयी व्याख्याएं की गई हैं। इन्हें नियुक्ति कहते हैं। इन नियुक्तियों की संख्या 10 है। ये प्राकृत भाषा में है। दूसरा भाषा भी पद्य में लिखे गए हैं। कदाचित भाषियों की संख्या 11 थी। ये भी प्राकृत भाषा में है। तीसरा चूर्ण इनकी भाषा प्राकृत और संस्कृत का सम्मिश्रण है। इससे प्रकट होता है कि जैन धर्माचार्य प्राकृतिक का परित्याग कर धीरे धीरे संस्कृत को अपनाने लगे थे। चौथा टीका ये अधिकांशता संस्कृत में लिखी गई हैं। इस प्रकार ब्राह्मण व्यवस्थाकारों की भांति जैन व्यवस्थाकारों ने भी संस्कृत को अपने धर्म ग्रंथों का माध्यम बना लिया। जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकारों में हरिभद्र सूरी 705 से 770 ईस्वी श्रीलंक 862 से 862 के लगभग नेमी चंद्र सूरी 11वीं शताब्दी अभयदेव सूरी 11वीं शताब्दी और मलयगिरी 13वीं शताब्दी अधिक प्राचीन है। दूसरा ऐतिहासिक एवं समसामायिक ग्रंथ धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भारतीयों ने अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना की थी जिनके विषय धर्मेतर थे। इस प्रकार के ग्रंथों में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक सामग्री भरी पड़ी है। इनसे राजनीतिक इतिहास पर तो प्रकाश पड़ता ही है, साथ में सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। अब हम ऐसे ही ग्रंथों का उल्लेख करेंगे। पहला कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें तत्कालीन भारत का स्पष्ट चित्रण मिलता है, परंतु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस अर्थशास्त्र में वर्णित व्यवस्था कहां तक व्यवहारिक थी और कहां तक आदर्श रूप मात्र। दूसरा गार्गी संहिता, इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख है, अतः इसकी रचना प्रथम शताब्दी के लगभग ही हुई होगी। तीसरा मालविकाग्निमित्र, यह कालिदास का नाटक है, अतः इसकी रचना 4वीं शताब्दी के अंत में अथवा 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई होगी। इस नाटक में पुष्यमित्र और यवन युद्ध का भी उल्लेख है। चौथा मुद्रा राक्षस, इस राजनीतिक नाटक की रचना विशाखदत्त ने की थी। विशाखदत्त का काल 600 से 700 ईस्वी के लगभग रहा होगा। यह नाटक चाणक्य एवं चंद्रगुप्त द्वारा नंदवंश के विनाश पर प्रकाश डालता है। पांचवा हर्ष चरित्र, इसकी रचना बाण भट्ट ने 7वीं शताब्दी में की थी। इससे हर्ष के जीवन एवं हर्ष काल की भारतवर्ष की अवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। छठवा कामंदकी नीति शास्त्र, इस नीति शास्त्र की रचना कामंदक ने की थी। इसका रचना काल 700 से 800 ईस्वी के लगभग रहा होगा के तत्कालीन आचार व्यवहार पर विशेष प्रकाश पड़ता है। सातवा बृहस्पति अर्थशास्त्र, कौटिल्य की भांति बृहस्पति ने भी एक अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसकी रचना 900 से 1000 ईस्वी के लगभग हुई होगी। इसमें राजकीय कर्तव्यों का अच्छा विवरण मिलता है। आठवा राजतरंगिणी, इसकी रचना कश्मीर के लेखक कलहर ने 12वीं शताब्दी में की थी। इसमें कश्मीर का इतिहास है। नौवा गौनवही, इसकी रचना वाकपति राज ने प्राकृत भाषा में की। इसमें कन्नौज नरेश यशोवर्मा की दिग्विजय का वर्णन है। दसवा नवाशा हंसाक चरित, इसे परिमल गुप्त ने लिखा था। यह ग्रंथ परमार वंश पर प्रकाश डालता है। ग्यारहवा विक्रमावदेव चरित, यह विल्हर द्वारा लिखा गया था। इससे कल्याणी के चालुक्य वंश पर प्रकाश पड़ता है। तीसरा विदेशियों के विवरण, समय समय पर अनेक विदेशियों ने जनश्रुतियों अथवा आत्मगत अनुभवों के आधार पर भारतवर्ष के विषय में अनेक विवरण लेख अथवा ग्रंथ लिखे थे। उनमें से बहुत से खो गए, बहुत से किंवदंतियों अथवा अप्रामाणिक बातों के मिल जाने से संदिग्ध दिखाई पड़ते हैं, परंतु बहुत से आज तक अपनी अप्रामाणिकता को न्यूनाधिक मात्रा में संरक्षित रखते हुए विद्यमान हैं। इनके स्वतंत्र अथवा तुलनात्मक अध्ययन से हमारे इतिहास निर्माण में बड़ी सहायता मिली है। समस्त विदेशी लेखों पर निम्नलिखित रूप में विचार कर सकते हैं। यूनानी लेख। यूनानी लेखकों के लेखों ने भारतीय इतिहास निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण सहायता दी है। ये लेखक तीन कोटियों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला, सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, दूसरा सिकंदर के समकालीन लेखक और तीसरा सिकंदर के बाद के लेखक। पहला, सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक। इनमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय है स्काइलैक या पारसिक नरेश दारा का यूनानी सैनिक था। हेरोडोटस का साक्ष्य है कि दारा ने इसे सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। भारतवर्ष के विषय में इसकी थोड़ी बहुत जानकारी एकमात्र सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। दूसरा यूनानी लेखक हेकेटियस मिल्टेस था। ईसा पूर्व 549 ईस्वी पूर्व 496 इसका भूगोल काइलेक्स के विवरण तथा पारसिकों की सूचनाओं पर आधारित था। इसका ज्ञान भी सिंधु घाटी तक ही सीमित था। उपयुक्त दोनों यूनानी लेखकों से भारतीय इतिहास का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, परंतु उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था हेरोडोटस ईस्वी पूर्व 484 ईस्वी पूर्व 431। इसे इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। इसके लिखे ग्रंथ का नाम स्टोरिका है, जिसमें इसने अनेक देशों के विषय में विवरण दिए हैं। इसमें भारतवर्ष के विषय में भी उल्लेख है, परंतु यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि हेरोडोटस ने भी भारतवर्ष उत्तर पश्चिमी जातियों का ही न्यूनाधिक परिचय पाया था, वह भी दूसरे लोगों के माध्यम के द्वारा। इसलिए उसका भारतीय विवरण भी पूर्ण अथवा नितांत प्रामाणिक नहीं है। कैसियस नामक अन्य यूनानी पारसिक नरेश अष्टिजिगजीज की राज्यसभा में रहता था। यह राजवैद्य था। ईसा पूर्व 416 ईस्वी पूर्व 398, परंतु साथ ही साथ इतिहास का भी पंडित था। इसने भारत और ईरान दोनों देशों के इतिहास लिखे, जो क्रमशः इंडिका और पर्शिका के नाम से प्रख्यात हुए, परंतु अभाग्य से परवर्ती लेखकों में इसके उद्धरण ही मिलते हैं। पारसिक नरेश की सभा में रहने के कारण यह व्यक्तिगत रूप से उन भारतीयों के संपर्क में आया था जो भारत से व्यापारी अथवा कारवाहक के रूप में पारस आते थे। भारतवर्ष से लौटे हुए अनेक पारसिक पदाधिकारियों ने भी इसे महत्वपूर्ण सूचनाएं दी थी। अतः भारतवर्ष के विषय में इसे बहुत कुछ बातें विदित हो गई हैं। फिर भी इसके लेखकों में अविश्वसनीय एवं अतिरंजित बातें मिलती हैं। इसका कारण है कि इसने भी भारतवर्ष के विषय में प्रचलित अनेक किस्से कहानियों को अपने इतिहास में स्थान दिया था। दूसरा, सिकंदर के समकालीन लेखक। भारतवर्ष पर आक्रमण करने के लिए आया हुआ सिकंदर अपने साथ सैनिकों एवं सेनापतियों के अतिरिक्त लेखक और विद्वान भी लाया था। इन लेखकों और विद्वानों ने प्रयाण मार्ग द्वारा तथा युद्धों के अनुभवों को लेखबद्ध किया। यदि इन लेखकों ने संसार को अपने लेख न दिए होते तो हमें भारतवर्ष पर सिकंदर के अनुभव की अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का ज्ञान भी न होता, क्योंकि किसी भी भारतीय ग्रंथ अथवा अन्य साक्ष्यों में इस आक्रमण का उल्लेख नहीं है। अभाग्य से सिकंदर के साथ आए हुए इन समस्त लेखकों और विद्वानों के मूल लेख विलुप्त हो गए हैं। इनके उदाहरण ही स्ट्रैबो, प्लीनी और एरियन आदि परकालीन के लेखों में मिलते हैं, परंतु उन उद्धरणों के आधार पर ही ये अनुमान किया जा सकता है कि सिकंदर के समकालीन लेखकों के मूल विवरण कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। सिकंदर के साथ आए हुए लेखकों और विद्वानों में निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला, नियाकश यजहाजी बेड़े का एडमिरल था। इसके लेखों के अवशेष स्ट्रैबो और एरियन के लेखों में संरक्षित हैं। दूसरा, एरिस्टोव्यूलस इसने अपने अनुभवों को युद्ध का इतिहास नामक ग्रंथ में लेखबद्ध किया था। एरियन और प्लूटार्क ने अपने ग्रंथों को लिखने में इनसे काफी सहायता ली थी। तीसरा, ओनेसिक्रेट या जहाजी बेड़े का पायलट था। इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। यद्यपि इसमें किंवदंतियों और गल्पों का समावेश अधिक हुआ था, तथापि अनेक स्थलों पर इसके वर्णन महत्वपूर्ण थे। तीसरा, सिकंदर के पश्चात के लेखक। इस प्रकार सिकंदर के पश्चात के लेखकों के लिए काफी पृष्ठभूमि बन गई थी। अब वे पूर्वोल्लिखित सामग्री एवं आत्मगत अनुभवों के आधार पर वास्तविक इतिहास का निर्माण कर सकते थे। इन परगामी लेखकों में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय है। पहला, मेगास्थनीज। यह चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत था, अतः भारतवर्ष के विषय में इसका विवरण प्रत्यक्ष रूप से देखी सुनी बातों पर आधारित था। इसने भारतवर्ष पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था, परंतु अभाग्यवश वह ग्रंथ विलुप्त हो गया। फिर भी परवर्ती लेखकों में इसके उद्धरण पाए गए। उन्हीं को डॉक्टर स्वानवेग ने एक स्थान पर संग्रहित कर 1846 में प्रकाशित किया। 1891 में मैक रिडल महोदय ने इस संग्रह को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इस अनुवाद को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि मेगास्थनीज का विवरण पूर्वगामी लेखकों की अपेक्षा कितना अधिक सांगोपांग, स्पष्ट और शुद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसके पुत्र बिंदुसार की राज्यसभा में यूनानी सम्राट ने अपने राजदूत डीमेकस को भेजा। इसका लिखा हुआ भी एक मूल विवरण उपलब्ध नहीं होता। स्ट्रेबो ने अपने लेखों में एक दो बार डीमेकस के कथनों के उद्धरण दिए हैं। स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज और डीमेकस का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये दोनों लेखक झूठे हैं और उनके लेख नितांत अविश्वसनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन लेखकों के अनेक कथन अशुद्ध और अतिरंजित हैं। इसका कारण यह है कि या तो ये कुछ भारतीय विशेषताओं को समझ नहीं सके या इन्हें असत्य सूचनाएं मिली थी। परंतु मेगास्थनीज की पुस्तक भी मूल रूप में अप्राप्य है। ईसा की प्रथम शताब्दी का अत्यंत प्रसिद्ध लेखक स्ट्रेबो था। इसने देश विदेश में भ्रमण करके भारी अनुभव प्राप्त किया था। इसका ग्रंथ भूगोल इतिहास में अपना बड़ा महत्व रखता है। भौगोलिक अवस्थाओं के अतिरिक्त इसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्थाओं का भी उल्लेख है। भारतवर्ष के विषय में भी इसमें विविध ज्ञातव्य बातें हैं। प्लीनी दी एल्डर ने प्राकृतिक इतिहास नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा जो 77 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 37 अध्याय हैं। 6 अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है। यह मेगास्थनीज की इंडिका पर अवलंबित है। ईसा की दूसरी शताब्दी एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक दो ग्रंथ लिखे। ये दोनों ग्रंथ सिकंदर के समकालीन लेखकों और मेगास्थनीज के विवरणों पर आश्रित थे। संपूर्ण विवरण को देखते हुए मानना पड़ेगा कि उसकी अधिकांश बातें सत्य हैं। इसका सविस्तार विवेचन आगे किया जाएगा। डीमेकस की भांति डायनोसियस भी मौर्य नरेश बिंदुसार की राज्यसभा में यूनानी राजदूत के रूप में रहा था। इसका मूल ग्रंथ भी अप्राप्य है। इन यूनानी लेखकों के पश्चात प्रोटोक्लीस का नाम आता है। यह यूनानी नरेश सेल्यूकस और एटिओकस प्रथम ईस्वी पूर्व 281 ईस्वी पूर्व 261 के किसी पूर्वी प्रांत का एक पदाधिकारी था। इसने पूर्वी देशों का भूगोल ग्रंथ लिखा था। इसमें भारतवर्ष का भी वर्णन था। स्ट्रेबो ने प्रोटोक्लीस के लेख की प्रशंसा करते हुए इसे नितांत विश्वसनीय माना है। सिकंदरिया के विशाल पुस्तकालय के प्रधानाध्यक्ष एरोस्थनीज ईस्वी पूर्व 276 ईस्वी पूर्व 194 ने, जो स्वयं भूगोल का विशेषज्ञ था, प्रोटोक्लीस के लेखों की प्रशंसा की है। 144 ईस्वी पूर्व के लेखक पॉलीबियस ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा, परंतु अभाग्य से यह विलुप्त तो हो गया है। 100 वर्ष ईस्वी पूर्व के लगभग एक यूनानी यात्री ने पेरिप्लस नामक पुस्तक लिखी। दूसरी शताब्दी में भी एलियन नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने एक कलेक्शन ऑफ मिसेलेनियस हिस्ट्री और ऑन द पेकलिनिटीज ऑफ एनिमल्स नामक दो ग्रंथ लिखे। प्रथम से भारतवर्ष के इतिहास तथा द्वितीय से भारतवर्ष के पशु वर्ग की बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और भी यूनानी लेखकों के लेख और उद्धरण मिलते हैं, जिनके उल्लेख यथास्थान किए जाएंगे। यहाँ पर उपयुक्त यूनानी लेखकों के साथ साथ रोमन लेखक टॉलमी का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है। यह ईसा की दूसरी शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान था। इसने भूगोल नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि उसकी विद्वता की सूचना देता है, परंतु अभाग्य से टॉलमी को भारतवर्ष की प्राकृतिक सीमाओं का विशुद्ध ज्ञान न था। इसी से उसने भारतवर्ष का जो मानचित्र प्रस्तुत किया है वह अशुद्ध है। चीनी लेख। यूनानी लेखों की भांति चीनी लेखकों के लेख भी भारतवर्ष के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। अनेक चीनी यात्री समय समय पर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का अध्ययन करने अथवा परिभ्रमण के अभिरुचि से भारतवर्ष आते थे। इनमें से कुछ तो स्वयं बौद्ध थे, अतः उनका महात्मा बुद्ध की पुण्य जन्म भूमि का दर्शन करने के हेतु भारतवर्ष में आना नितांत स्वाभाविक था। यही नहीं, चीन में रहते हुए भी कुछ चीनी लेखकों ने भारतवर्ष की सुविकसित सभ्यता, संस्कृति और धर्म के विषय में महत्वपूर्ण उल्लेख किए हैं। ये सब हमारे इतिहास निर्माण में विशेष रूप से सहायक हुए हैं। सुमा चीन, यह चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार था। चीनी इसे अपने इतिहास का जन्मदाता मानते हैं। इसने ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें भारतवर्ष के संबंध में भी उल्लेख मिलते हैं। फायान, परंतु विशेष महत्व के लेख थे फायान के। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन था। इस प्रयोजन से यह भारतवर्ष में 15-16 वर्षों तक रहा। धार्मिक मनोवृत्ति का व्यक्ति होने के कारण फायान ने भारतवर्ष की धार्मिक अवस्था विशेषता एवं बौद्ध धर्म की अवस्था पर प्रचुर प्रकाश डाला है, परंतु अन्य विषयों के विवरण शिथिल हैं। यहाँ तक कि उसने भारतीय सम्राट का नामोल्लेख तक नहीं किया। उसके स्थान पर यदि कोई इतिहास प्रवीण व्यक्ति होता तो वह 15-16 वर्ष के दीर्घ काल का उपयोग अधिक विस्तृत एवं प्रामाणिक विवरण लिखने में करता। फिर भी फायान का भारत वर्णन कम महत्वपूर्ण नहीं है। हेन सॉन्ग, यह भी बौद्ध चीनी यात्री था और हर्ष के शासनकाल में 629 ईस्वी के लगभग भारतवर्ष आया था। यह भी देश में लगभग 13 वर्षों तक रहा। इस बीच दक्षिण भारत को छोड़कर इसने प्रायः संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। भिन्न भिन्न राज्यों में गया। देश में स्थान स्थान पर स्थित तीर्थों, विहारों, मठों आदि में गया। यह बहुत दिनों तक हर्ष की राज्यसभा में भी रहा। इसने प्रयाग और कन्नौज के धार्मिक अधिवेशनों में भी भाग लिया। सम्राट हर्ष एवं उनकी बहन राजश्री इस अतिथि का विशेष आदर करते थे। वेनसांग ने अपने अनुभवों को लेखबद्ध किया और जो भारतीय इतिहास के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। वोली, यह वेनसांग का मित्र था और उसने उसकी जीवनी लिखी थी जो भारतवर्ष पर भी प्रकाश डालती है। सिंह, यह यात्री 613 ईस्वी से 695 ईस्वी के लगभग भारतवर्ष आया था। इसने भी तत्कालीन अवस्था का वर्णन किया है, परंतु इसका वर्णन ह्वेनसांग के समान विस्तारपूर्ण और विशद नहीं है। तिब्बती लेख, तिब्बती लेखों में 12वीं शताब्दी के लेखक लामा तारानाथ के ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर विशेष प्रसिद्ध हैं, परंतु बौद्ध होने के कारण इसके लेख भी स्थान स्थान पर सांप्रदायिक और पक्षपातपूर्ण लगते हैं। पुनः उनमें अविश्वसनीय किंवदंतियों की भी भरमार है, अतः तारानाथ के लेखों का प्रयोग बड़ी सतर्कता के साथ करना चाहिए। चौथा, पुरातत्व संबंधी। पुरातत्व संबंधी सामग्री हमारे इतिहास निर्माण में बड़ी सहायक हुई है। इससे भारतवर्ष के अनेक तथाकथित अंध युगों पर प्रकाश पड़ा है। अनेकानेक संदिग्ध ऐतिहासिक मतों का निश्चित रूप से खंडन मंडन हुआ है। पुरातत्व का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आज एक मात्र इतिहास ही न रहा, वरन वह एक स्वतंत्र विषय बन गया है। इतिहास निर्माण में यह शास्त्र हमारे समक्ष दो रूपों में आता है, पहला प्रतिपादक के रूप में और दूसरा समर्थक के रूप में। प्रथम रूप में यह उन ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत करता है जो हमें अन्य साधनों से विदित नहीं होते। उदाहरणार्थ, समुद्रगुप्त की दिग्विजय का वर्णन एवं विस्तार हमें एकमात्र उसके प्रयाग स्तंभ लेख से ही विदित होता है। यदि यह स्तंभ लेख ना होता तो हम भारतीय इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण विषय से अनभिज्ञ रहते। इसी प्रकार यदि हाथी गुम्फा अभिलेख न मिलता तो हमें भारतवर्ष के एक प्रतिभाशाली नरेश खारवेल का कुछ पता ही नहीं चलता। दूसरे रूप में पुरातत्व हमें किसी नई वस्तु का ज्ञान नहीं कराता, वरन यह अन्य साधनों से ज्ञात किसी न किसी वस्तु का समर्थन करता है। इतिहास का निर्माण आकस्मिक रूप से प्राप्त किसी उल्लेख से नहीं हो सकता। इतिहास का निर्माण एक साधन पर अवलंबित हमारा ज्ञान बहुधा संदिग्ध रहता है। इतिहास को असंदिग्ध पीठिका पर स्थापित करने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। इतिहास निर्माण का यह प्रारंभिक नियम है कि निश्चित सत्य के रूप में प्रतिपादित करने के पूर्व हमें अपने कथन की पुष्टि विविध साधनों में करनी चाहिए। यह गुरु कार्य पुरातत्व के द्वारा भली भांति संपादित हुआ है। उसने अनेक प्रचलित धारणाओं का खंडन मंडन किया है। उदाहरणार्थ, पतंजलि के महाभाष्य के कतिपय वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र सुंग ने कोई यज्ञ किया था, परंतु एक व्याकरण ग्रंथ के एक दो वाक्यों के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष निकालने में अनेक विद्वान संकोच कर रहे थे। ऐसी संदिग्ध परिस्थिति में पुरातत्व ने उनका शंका समाधान किया। अयोध्या का अभिलेख मिला और उसने स्पष्ट स्वर में घोषित किया, दिवर अश्वमेघ याजिनः सेनापते पुष्यमित्रस्य। इस प्रकार पुरातत्व ने पतंजलि के महाभाष्य के कथन की पुष्टि करते हुए यह कहा कि पुष्यमित्र सुंग ने दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे। यह है पुरातत्व के समर्थक रूप का महत्व। इतिहास निर्माण में सहायक संपूर्ण पुरातत्व सामग्री को हम तीन कोटियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला अभिलेख, दूसरा स्मारक और तीसरा मुद्राएं। यहाँ हम तीनों कोटियों पर अलग अलग विचार करेंगे। पहला अभिलेख, ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के पूर्व भारतवर्ष में अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा प्रचलित न थी। कुछ विद्वानों ने बस्ती में प्राप्त पिपरा कलश लेख और अजमेर में प्राप्त बडली अभिलेख का पूर्व अशोक कालीन बताकर उपयुक्त कथन को खंडित करने की चेष्टा की है, परंतु यदि हम इन दो अभिलेखों को पूर्व अशोक कालीन स्वीकार भी कर ले तो भी वे अपवाद के रूप में ही ग्रहण किए जा सकते हैं, नियम के रूप में नहीं। अभिलेखों की परंपरा तो अशोक काल से ही भारतवर्ष में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हुई दिखाई पड़ती है। प्राचीन अभिलेख अनेक स्थानों और अनेक रूपों में मिलते हैं, अधिकांशतः ये तंबों, शिलाओं और गुहाओं पर मिलते हैं, परंतु कभी कभी ये मूर्तियां, प्रकारों, पात्रों, ताम्रपत्रों और मुद्राओं पर भी पाए गए हैं। समस्त अभिलेख किसी महनीय घटना अथवा कर्म की स्मृति को अक्षय रखने के लिए ही लिखाए जाते थे। परिणामतः इन अभिलेखों में विजय, कृति, दान, सत्कर्म अथवा समारोह आदि का वर्णन मिलता है। पहला स्तंभ लेख, भारतवर्ष में स्तंभ स्थापना की परंपरा अति प्राचीन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि नगरों की खुदाई से पता लगा है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भी लोग स्तंभों को स्थापित करते थे। अनेक स्तंभ खुदाई में मिले हैं, इन पर कोई लेख नहीं है। कदाचित ये पवित्र समझे जाते थे, इनकी पूजा होती थी। कालांतर में इन स्तंभों पर लेख भी खुदने लगे। अशोक के स्तंभ लेख अपनी बहुसंख्या विवरणात्मकता के कारण पासार पर उत्तीर्ण उसकी आत्मकथा ही है। कालांतर में स्तंभों का प्रचुर प्रयोग किया गया। जैन धर्मावलंबियों ने अपने दीप स्तंभ बनवाए, वैष्णवों ने अपने गरुड़ ध्वज स्तंभ, सूर कर्मो नरेशों विशेषकर राजपूतों ने अपनी कृति को घोषित करने के लिए स्थान स्थान पर कृति स्तंभ, विजय स्तंभ और रण स्तंभ स्थापित किए। स्तंभ निर्माण की परंपरा आज भी जीवित है। भारतीय सरकार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के हुतात्माओं की अमर स्मृति में अनेक स्थानों पर कीर्ति स्तंभों और विजय स्तंभों का निर्माण करने जा रही है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अशोक के स्तंभ लेख अति महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक स्थान पर तो अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्राकृतिक शिलाएं मिलती नहीं, इसी से अशोक ने पाषाण की सहायता से कृत्रिम स्तंभ निर्मित करवाए और उन पर अपने अभिलेख उत्कीर्ण तत्पश्चात वे अन्य स्थानों पर भेजकर गढ़वाए गए। अशोक के स्तंभ लेखों के अतिरिक्त इंडो यूनानी हेलिओडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख जो अशोक के प्रयाग के स्तंभ के ऊपर ही उत्कीर्ण है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख भारतीय इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरा शिलालेख, पर्वतीय प्रदेशों में यह लेख बहुत संख्या में मिले हैं। पहाड़ियों को काटकर उनके बीच शिलालेखों को साफ और समतल कराने के पश्चात वहीं उनके ऊपर अभिलेख उत्कीर्ण करवा दिए जाते थे। बहुधा शिलाखंडों को अलग करके अथवा कृत्रिम रूप से निर्मित करके अपर्वतीय प्रदेशों में भी उनका उपयोग किया गया है। सर्वप्रथम शिलालेखों में अशोक के शिलालेख विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनके पश्चात पुष्यमित्र सुंग का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्र ब्राह्मण का जूनागढ़ अभिलेख तथा अन्य अन्य पर्वतीय नरेशों के अनेका अनेक शिलालेख भारतीय इतिहास के निर्माण में विशेष सहायक हुए हैं। तीसरा गुहा लेख, ये लेख भी पर्वतीय प्रदेशों में भी बहु संख्या में मिले हैं। दानशील राजा अथवा अन्य अन्य मनुष्य बहुधा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के भिक्षुओं और साधु संतों के निवास के लिए गुहाओं का निर्माण करते रहते थे। उन्हें गुहाओं में उनके नाम, वंशता, निर्माण संबंधी अन्य अन्य बातों का उल्लेख कर दिया जाता था। ये गुहा लेख दानग्राही दोनों के विषय पर प्रकाश डालते हैं। इनमें अशोक के बराबर गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक, नाना घाट और काल आदि स्थानों के गुहालेख तथा गुप्तकालीन विभिन्न गुहालेखों में विविध इतिहास सामग्री भरी है। चौथा मूर्ति लेख, इन अभिलेखों की प्राप्ति उसी काल से प्रारंभ होती है जब से भारतवर्ष में ब्राह्मण धर्मानुयायियों तथा बौद्ध एवं जैन धर्मानुयायियों ने बहु संख्या में मूर्तियों का निर्माण करना प्रारंभ किया। विभिन्न स्थानों पर स्थापित अथवा उत्कीर्ण मूर्तियों के शीर्ष स्थान अथवा अधोभाग पर कभी कभी कुछ लेख भी मिल जाते हैं। भारतवर्ष के विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित मूर्तियों पर इस प्रकार के लेख आज भी देखे जा सकते हैं। इन मूर्ति अभिलेखों से भी इतिहास निर्माण में सहायता मिली है। पांचवा प्राकार अभिलेख, बहुधा प्राचीन मंदिरों और स्तूपों के चतुर्दिक प्राकार चहार दीवारी निर्मित कर दी जाती थी। इन प्राचीरों पर भी कभी कभी अभिलेख पाए गए हैं। उदाहरणार्थ बरहूत स्तूप के प्राकार पर सुगन रजे लिखा हुआ है। इस अभिलेख से ही प्रकट हो जाता है कि उस स्तूप का वह प्राकार सुंग राजाओं के समय भी निर्मित हुआ था। छठवां पात्र अभिलेख। कभी कभी प्राचीन काल के उपलब्ध मृत पात्रों और धातु पात्रों पर भी अभिलेख मिल जाते हैं। सिंधु प्रदेश की खुदाई में बहुसंख्यक पात्र निकले हैं। उनमें से अनेक पर विविध चिन्ह और चित्र मिलते हैं। बहुत संभव है कि इनमें से कुछ पर तत्कालीन लिपि में लेख लिखे हों, परंतु अभाग्य से अभी तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। पिपरा कलश लेख का पहले उल्लेख किया जा चुका है। कुछ विद्वान इसे पूर्व अशोक कालीन मानते हैं। परवर्ती काल के बहुसंख्यक पात्रों पर भी अभिलेख मिले हैं। सातवां ताम्रपत्र अभिलेख। प्राचीन काल में नरेश जब किसी व्यक्ति को जमीन जायदाद आदि का दान अथवा परितोषिक देते थे तो उसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करा के उस व्यक्ति को दे देते थे। ये ताम्रपत्र उस व्यक्ति के अधिकार के प्रमाण पत्र समझे जाते थे। इन पर दान अथवा पारितोषिक की घोषणा करने वाले नरेश का नाम, वंश, कर्म आदि भी उल्लेखित रहता था। इस प्रकार ये ताम्रपत्र बड़े महत्व के समझे जाते हैं। गुप्तकालीन इतिहास निर्माण में इनसे बड़ी सहायता मिली है। आठवां मुद्रा अभिलेख। प्राचीन काल में मुद्राएं अर्थात मोहरे मिट्टी और धातु दोनों की बनती थीं। प्रायः इन पर किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गढ़, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम अथवा हस्ताक्षर होते थे। ये मुद्राएं भी प्रमाण के रूप में प्रयुक्त तो होती थीं। सर्वप्रथम मुद्राएं सिंधु प्रदेश में मिली हैं, परंतु इनके लेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ऐतिहासिक युग में भी इन मुद्राओं का खूब प्रचलन रहा। अनेक संग्रहालयों में आज भी बहुसंख्यक प्राचीन मुद्राएं देखी जा सकती हैं। बहुतों पर अभिलेख भी मिलते हैं। अनेक महत्वपूर्ण अभिलेख देशों में भी मिले हैं। इनसे भी भारतीय इतिहास की अनेक बातें ज्ञात हुई हैं। उदाहरणार्थ एशिया माइनर की खुदाई में बोगजकोई नामक स्थान पर 1400 ईस्वी पूर्व लगभग संधि पत्र मिले हैं, जिनके अभिलेखों में मित्र, वरुण, इंद्र और नामसत्यस नामक वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। इसी प्रकार मिश्र में एल अर्मना नामक स्थान में कुछ मिट्टी की मुहरे मिली हैं। इनमें बेबीलोनिया नरेशों के नाम हैं, यथा अंतर्मन्य, अजवीय, यशदत्त, सुतर्न आदि। ये नाम वैदिक से लगते हैं। ईरान के साखा मनीष नरेशों के अभिलेख पर्शी पोलिस और नक्शे रुस्तम में मिले हैं। इनसे पता लगता है कि भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम प्रदेश का कुछ भाग ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में पारसिक साम्राज्य के अंतर्गत था। इस कथन की पुष्टि ईरान के ही हमदन स्वर्ण पत्रलेख और रजत पत्रलेख में भी होती है। दूसरा स्मारक। जिस प्रकार भारतीयों ने लेखनी के माध्यम से जीवन के विविध अनुभवों, विचारों और भावनाओं को प्रकट किया, उसी प्रकार छेनी, कन्नी और तुलिका के माध्यम के द्वारा भी इतिहास निर्माण में भारतीय स्थापत्यकार, वास्तुकार और चित्रकार किसी भी प्रकार लेखक से कम महत्वपूर्ण नहीं सिद्ध हुए। बहुधा पाषाण खंड और छेद रेखाएं सत ग्रंथों से भी अधिक बोधक होती हैं। प्राचीन भारत के जो मंदिर, स्तूप, गुहाएं, आराम, मूर्तियां, स्तंभ, तोरण, चित्रादि मिले हैं, उनमें भारतीय जीवन की अक्षय निधि अंतर्निहित है। पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के राजप्रसाद के ध्वंसावशेषों को देखकर यह अनुमान लगता है कि उस नरेश के पूर्व भारतवर्ष के वास्तु और स्थापत्य में लकड़ी का प्रयोग बहुलता से होता था। लकड़ी गैर टिकाऊ पदार्थ है, इसी से चंद्रगुप्त मौर्य के समय की और उसके पूर्व की कलाकृतियां प्रायः नष्ट हो गई हैं। परंतु अशोक के समय से भारतवर्ष में पाषाण का प्रयोग प्रचुरता में दिखाई पड़ता है। अतः अशोक काल और परवर्ती काल की बहुसंख्यक कलाकृतियां आज भी विद्यमान हैं। इनसे भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। पहला स्मारकों को देखकर भिन्न भिन्न कालों की कलाओं का अध्ययन किया जा सकता है। उनसे विविध कलाओं में प्रयुक्त सामग्री, विषय और प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। उनसे कलाओं के उत्थान पतन, उनके कारणों और परिणामों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा कलाकृतियों के विभिन्न स्वरूपों के सूक्ष्म अध्ययन से इतिहास के कालक्रम को निर्धारित करने में भी सहायता मिलती है। अपनी विशेष प्रणालियों से कलाकृतियाँ स्वयं अपने निर्माण काल को घोषित कर देती हैं। तीसरा कलाकृतियाँ अपने निर्माताओं के धार्मिक विचारों को प्रकाशित करती हैं। उदाहरणतः हिंदू प्रदेश में प्राप्त पाशुपत शिव की मूर्तियां तत्कालीन समाज में प्रचलित शैव पूजा को घोषित करती हैं। गुप्त काल की वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन मूर्तियां तत्कालीन धार्मिक सहिष्णुता को घोषित करती हैं। चौथा, मूर्तियां और चित्रों से भिन्न भिन्न कालों की वेशभूषा, अन्नों, वनस्पतियों, धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है। पांचवा, जीवन और कला का अन्योन्याश्रित संबंध है, अतः दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से भी हम भारतीय इतिहास के उत्थान पतन का चित्र अंकित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, खजुराहो की मूर्ति कला में जो असंयत अश्लीलता है वह तत्कालीन सामाजिक पतन का ही परिणाम है। ब्रजयान में कुल कलुषित सिद्धांतों के प्रसार ने जीवन के उदात्त मूल्यों का नाश कर दिया था, नारी साधकों की परम सिद्धि का साधन बन गयी थी। इन्हीं निग्रहित सामाजिक विचारधाराओं का अंकन मध्यकाल में हम मध्य भारत में बंगाल से काठियावाड़ तक देखते हैं। छठवां, स्मारकों के विदेशी अंशों से भारतवर्ष और विदेशों के पारस्परिक संबंध पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत बनी गांधार मूर्तियों में कौन कौन विदेशी अंश हैं और कौन गुप्त काल तक आते आते किस प्रकार उन अंशों का विदुरीकरण करके भारतीय कलाकारों ने उन मूर्तियों का पूर्णतः भारतीयकरण कर डाला, इन सब बातों का अध्ययन हमारे इतिहास निर्माण में बड़ा सहायक हुआ है। विदेशों में प्राप्त अनेक स्मारक भी भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास निर्माण में प्रचुर रूप में सहायक सिद्ध हुए हैं। भारतीय विषयों, आस्थाओं और प्रणालियों के आधार पर निर्मित स्मारकों के अवशेष आज भी संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। बोरो बोदर और प्रम्बनम में भारतीय देवालय और डिंडा पठार में शिवालय आज भी विद्यमान हैं। बोर्नियो में मुकरकमन नामक स्थान पर विष्णु की स्वर्ण मूर्ति मिली है। इसी प्रकार वाली द्वीप में भी मंदिर और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मलाया में सुनगेई वतु में एक मंदिर और शिव पार्वती, गणेश, नंदी आदि की मूर्तियां मिली हैं। सेलीबीज में कैंडेड के समीप पर एक बुद्ध प्रतिमा के अवशेष मिले हैं। कोम्बेड में ब्रह्मा, शिव, गणेश आदि भारतीय देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। बोर्नियो में कयुआ शरता की घाटी में भारतीयों के एक प्राचीन उपनिवेश के चिन्ह मिले हैं। ये सब स्मारक दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय उपनिवेश एवं भारतीय संस्कृति तथा धर्म के प्रचार की कहानी कह रहे हैं। तीसरा, मुद्राएं। मुद्राओं ने इतिहास निर्माण में बड़ी सहायता दी है। इस कथन की सत्यता इस बात से ही प्रकट होती है कि 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें प्रमुखतया मुद्राओं की सहायता से होता है। इस काल की मुद्राओं की सहायता के बिना यह काल बहुत कुछ अंधकाल ही रहता है। मुद्राओं की महत्ता इतनी अधिक स्वीकार की गई है कि आज उनके अध्ययन के लिए एक पृथक और स्वतंत्र शास्त्र मुद्रा शास्त्र ही खड़ा हो गया है। प्राचीन मुद्राएं निम्न प्रकार से इतिहास निर्माण में सहायक होती हैं। पहला, मुद्राओं पर बहुधा राजा का नाम, विरुद्ध तिथि, राजचिन्ह अथवा धर्म चिन्ह रहता है। इनसे इतिहास में राजाओं के वंश वृक्ष, उनके महनीय कार, उनके शासनकाल तथा उनके राजनीतिक एवं धार्मिक विचार निश्चित करने में सहायता मिलती है। दूसरा, कभी कभी उन पर अंकित विशेष चित्र विशेष घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर अश्व और यूप के चित्र हैं, साथ ही उन पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस कोटि की मुद्राएं समुद्रगुप्त के अश्वमेघ के उपलक्ष्य में निर्मित हुई थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त की व्याघ से अंकित मुद्राएं कदाचित उसकी पश्चिमी भारत की विजय के उपलक्ष्य में निर्मित हुई थी, क्योंकि व्याघ पश्चिमी भारत के घने वनों में प्राप्त होता है। तीसरा, कुछ मुद्राएं राज्य की व्यक्तिगत अभिरुचि को घोषित करती हैं। उदाहरणार्थ, समुद्रगुप्त की वीणा अंकित मुद्राएं और उसके संगीत प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। चौथा, कभी कभी मुद्राओं पर दो नाम मिलते हैं, ये बहुधा विजित और विजेता नरेशों के नाम होते हैं। बहुधा देखा गया है कि विजेता नरेश ने विजित नरेश की मुद्राओं को नष्ट नहीं किया, वरन उन पर अपना नाम अंकित करके पुनः उन्हें प्रसारित करवाया। उदाहरणार्थ, जोगल थम्बी फांड में बहुत सी मुद्राएं ऐसी मिली हैं जिनमें नहपान के नाम के साथ साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम है। इनसे प्रकट होता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित करके पश्चिमी भारत का राज्य उनसे छीन लिया था। पांचवा, शक क्षत्रपों की मुद्राओं पर भी बहुधा दो नाम मिलते हैं। ये नाम प्रधान शासक और उसके सहयोगी युवराज के होते थे। छठवा, पृथ्वी के नीचे गाड़े गए मुद्रा भांड बहुधा अशांति काल की घोषणा करते हैं। अशांति काल में ही बहुधा मनुष्य अपनी संपत्ति को संरक्षित रखने के ध्येय से उसे पृथ्वी के नीचे गाड़ दिया करते थे। सातवा, मुद्रा प्राप्ति के आधार पर कभी कभी राज्य की सीमाएं निर्धारित करने में सहायता मिलती है, परंतु इस विषय में मुद्राओं के साक्ष्य को बड़ी सावधानी और सजगता से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुद्राएं व्यापारियों और यात्रियों द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। आठवां, मुद्राओं की धातु राज्य की समृद्धता अथवा असमृद्धता की ओर संकेत करती हैं। उदाहरणार्थ, कंद गुप्त की मुद्राओं में सम्मिश्रित स्वर्ण मिलता है। यह स्वाभाविक ही था, विदेशी आक्रमणों और आंतरिक अशांति के कारण राज्य की आर्थिक अवस्था बिगड़ गई थी। नौवां, मुद्राओं के चित्रण एवं अभिलेख राज्य में कला और साहित्य की अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरणार्थ, गुप्त काल की मुद्राओं के चित्र बड़े ही कलात्मक हैं, उन पर उत्कीर्ण अभिलेख भी विशुद्ध एवं संगीतमय संस्कृत में हैं। इनसे राज्य की समन्तात उन्नति पर प्रकाश पड़ता है। दसवां, एक ही राजा के नाम की बहुसंख्यक मुद्राएं और दीर्घकालीन एवं समृद्धशाली शासक की ओर संकेत करती हैं। इसके विरुद्ध अल्पसंख्यक मुद्राएं उसके अल्पकालीन अथवा संकटपूर्ण शासन की सूचना देती है।